पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत भी है। अगर पिताजी चाहते तो यहाँ से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुँच सकते थे। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुँचे थे क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी। उनके कागजात तो रह नहीं गए थे। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहां आए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज भी दी लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद हैं। इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। SHO राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसीलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होंठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोंच के निशान थे और कुहनियां छिली हुई थी। वे कहीं न कहीं गिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहां कहां भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सकें। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें या उस ट्रैक्टर का पता पूछ लें, फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिक्ष के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें तब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में खिसटते हुए देखा गया था। यह कॉलोनी सराफा के जौहरियों, PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कब भी वहीं रहते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था जिसका नाड़ा बहुत शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वारस प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास के किसी खास पार्टी में संगीत सुनने के लिए दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन दो तीन लड़कों ने कहा कि यह आदमी रामरतन सराफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद भी उन्हें लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारस प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकिज के पास वाला चौराहा जहाँ पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास थाना और शहर के बाहरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 20-30 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। ये जगहें ऐसी हैं जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था। जहाँ तक सर्राफ की पत्नी और साली पर उनके हमले की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी के को अपने इतना करीब देख कर वे औरतें डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी, नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए। इतवारी कॉलोनी के लड़कों का जो झुंड उनके पीछे चल रहा था उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्य का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया, वे हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी, दुबरे शरीर की हड्डियां और छाती सफेद के सफेद बाल दिख रहे थे। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगते थे, आओ ससुरो आओ एक एक को मार डालूंगा होसड़ी वाले तुम्हारी माँ की, लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी, हमने उन्हें कभी गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उलझुल उटपटांग और बेमतलब लगी होंगी, वे इस पर अविश्वास करने लगे होंगे। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें किसी त्रिक्ष ने नहीं काटा है, बल्कि त्रिक्ष तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा, पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत जाने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज के सहारे उस दुस्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों का मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी, उनके कनपट्टी माथे पीठ शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंटें और ढेले लग गए। सड़क का ढेला ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाते हैं कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। आंख खोलते ही आंगन बुहारती माँ नजर आएगी, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरैयों का झुंड। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में इस अजीब गरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए थे तो इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है पूरी ताकत से ढेला मार कर वे उत्सुकता और बेचैनी से इंतजार कर रहे हो कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस स्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। एक सबसे बड़ी विडम्बना यह भी इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी बचपन के पुराने दोस्त पंडित कन्हई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे, उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह भी पता चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कन्हई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिलो डुले तो लड़कियों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 बाद भी पिताजी नहीं हिलो डुले तो सतनाम ने सत्य से कहा था कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मारकर देखे कि वे सिर्फ बेहोश हैं तो हो सकता है कि उठ जाएं, लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की गीली मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे, तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टाकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइन्स की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने आकर सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्ढी भी नहीं रह गई थी, वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झागा तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया, तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वारस प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिक्ष ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान लगा सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाई आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, कालर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतीरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानु कहता था कि अब तो यह तय हो गया कि वृक्ष के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हैं धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कानों में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे माँ को और छोटी बहन को देखा होगा, फिर वे दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुःस्वप्न को वे भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा, हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे असर आता है। वह यूँ है कि मैं खेतों की मेड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल पहुँच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि वृक्ष की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है, आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर वृक्ष को कुचलने लगता हूँ और जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानु मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है, तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानु भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ, तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती हैं, हजारों हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगें लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है कि मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आँख फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहला कर वह मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, मुझे आखिरकार अब वृक्ष का सपना क्यों नहीं आता।